अर्जुन के बटुए में ठीक 430 रुपये थे, एक आधा चार्ज किया हुआ फोन, एक जोड़ी कपड़े और बिल्कुल भी कोई योजना नहीं थी। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो यह उसकी सबसे बुरी स्थिति नहीं थी। तीसरे साल में इससे भी बुरी घटनाएं हुई थी। उसे याद आता है जब उसने गलती से अपने टर्म पेपर की जगह प्रोफेसर शिंदे की किराने की सूची जमा कर दी थी, या फिर पुणे वाली घटना जिसके बारे में उसने कसम खाई थी कि वह फिर कभी नहीं सोचेगा। लेकिन ये घटना, रात 1 बजे राजस्थान के एक खुदाई स्थल से भागना, कानों में भूत की चेतावनी गूंज रही थी और हथेली पर एक शापित सर्पिल टैटू बना हुआ था, यह निश्चित रूप से शीर्ष 3 में शामिल थी। वह चुपचाप अंधेरे शिविर में आगे बढ़ा, उसके बूट कीचड़ में धंस रहे थे, उसका बैग एक कंधे पर टंगा हुआ था, आपूर्ति तंबू हल्की रोशनी से जगमगा रहा था, प्रोफेसर शिंदे अभी भी जाग रहे थे, पढ़ने का नाटक कर रहे थे। अर्जुन नमूनों के बक्सों की एक पंक्ति के पीछे छिप गया और अपनी सांस रोक ली जब प्रोफेसर कार्बन डेटिंग त्रुटियों के बारे में कुछ बुदबुदाते हुए उसके पास से गुजरे। जैसे ही शिंदे वापस तंबू में चले गए, अर्जुन हरकत में आ गए। निकटतम कस्बे तक जाने वाली सड़क 4 किलोमीटर तक अंधेरी, गीली और सुनसान थी। वह तेज चल रहा था, टॉर्च बंद थी, कोई अनकही सहज प्रवृत्ति उसे अपनी स्थिति जाहिर न करने के लिए कह रही थी। ऊपर आसमान में बादल तेजी से दौड़ रहे थे। दोनों ओर के खेत उस समय की खामोशी में डूबे हुए थे, एक ऐसी खामोशी जिसमें एक अलग ही गहराई थी। जब वह 2 किलोमीटर दूर था तब उसने वाहनों की आवाज सुनी। उनमें से 3 गाड़ियां, काली एसयूवी, बिना हेडलाइट के कच्ची सड़क पर शिविर की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। अंधेरे में वे चलती हुई परछाइयों जैसी लग रही थीं। अर्जुन सड़क के किनारे बने गड्ढे में कूद गया और गीली घास में चेहरा छिपाकर पूरी तरह लेट गया, क्योंकि वे गाड़ियां उसके इतने करीब से गुजरी कि उसे कंपन अपने दांतों तक महसूस हुई। झाड़ियों के बीच से उसने दरवाजों की एक झलक देखी। हर दरवाजे पर एक छोटा सा प्रतीक चिन्ह बना हुआ था, एक सांप 7 बार कुंडली मारकर अपनी ही पूंछ को खा रहा था। नागा संघ उन्होंने कोई अतिशयोक्ति नहीं की थी। उसने आवाज बंद होने तक इंतजार किया, फिर भाग गया। फतेहपुर बेरी कस्बे में उस समय केवल एक ही ऑटो रिक्शा चल रहा था, जिसे बलवंत नाम का एक व्यक्ति चला रहा था। वह बिना कोई सवाल पूछे दुगना किराया वसूलता था। अर्जुन ने बिना बहस किए किराया चुका दिया। सुबह 3 बजे तक वह निकटतम रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया था और बेताब निगाहों से प्रस्थान बोर्ड को देख रहा था। वाराणसी जंक्शन, प्रस्थान 4:15, प्लेटफॉर्म 2, 1 सीट उपलब्ध, सामान्य डिब्बा। उसने अपने आखिरी 380 रुपये से टिकट खरीदा और अपने पास 50 रुपये बचा लिए। 50 रुपये, वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर वेंडिंग मशीन से खरीदा हुआ बिस्कुट खा रहा था, जिसका स्वाद गत्ते और महत्वाकांक्षा जैसा था, और सोच रहा था कि क्या भूत तनाव और दूषित खुदाई स्थल के पानी के कारण होने वाले मतिभ्रम हो सकते हैं। वो मतिभ्रम नहीं था, मिर्जा ने कहा, जो बेंच पर उसके बगल में आकर बैठ गया और सुबह के 3 बजे के हिसाब से बहुत खुश दिख रहा था। इस बार अर्जुन जरा भी नहीं हिचका, सदमे को सहने की उसकी क्षमता पहले ही खत्म हो रही थी। क्या तू मुझे हर जगह फॉलो करेगा, उसने अपने बिस्किट से ऊपर न देखते हुए पूछा। हाँ, मिर्जा ने प्रस्थान बोर्ड को बड़ी उत्सुकता से देखा, मानो उसने कई सदियों से कोई ट्रेन न देखी हो। ये क्या होता है, लोहे का घोड़ा? ट्रेन है, रेलगाड़ी, अर्जुन रुक गया, तू सच में 13वीं सदी का है? 16वीं, मिर्जा ने हल्के से नाराज होकर सुधार किया, 1587, अकबर का जमाना, मैं आगरा का सबसे टैलेंटेड और बदकिस्मत चोर। हाँ, सुन लिया, अंततः अर्जुन ने उसकी ओर देखा। करीब से देखने पर भूत का अजीब विवरण था, उसके कोट पर कढ़ाई, उसकी पारभासी उंगलियों पर अंगूठियां, उसकी बाईं भौहें के ऊपर छोटा निशान। तुझे कैसे पता था कि वो लोग आ रहे थे? मिर्जा का मनोरंजन थोड़ा फीका पड़ गया, उसकी जगह कुछ और गंभीर चीज ने ले ली। क्योंकि मैं 300 साल से उन्हें देख रहा हूँ, उसने धीरे से कहा। नागा संघ बहुत पुरानी तंजीम है, उनका काम मुहूरों की रक्षा करना है। लेकिन वह रुके, शब्दों का ध्यानपूर्वक चयन किया, कुछ साल पहले कुछ उनके अंदर बदल गया, अब वो सिर्फ रक्षा नहीं करते, वो कुछ और चाहते हैं। क्या चाहते हैं? दूर से ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया, एक लंबी उदास ध्वनि अंधेरे प्लेटफॉर्म पर गूंज उठी। यह वाराणसी में पता चलेगा, मिर्जा ने कहा, और जैसे ही पटरी के दूसरे छोर पर ट्रेन की हेडलाइट्स दिखाई दी, वह गायब हो गया। सुबह 4:15 जनरल कंपार्टमेंट अपने आप में एक अलग ही दुनिया थी। अर्जुन को खिड़की के पास एक सीट मिल गई, जहां एक सोता हुआ आदमी था जिसकी खर्राटे लेने की आवाज में एक अजीब लय थी, और एक युवती थी जो तेजी से कुछ बड़ा और नारंगी रंग का बुन रही थी। बत्तियां हल्की पीली थीं, पंखे धीरे धीरे चल रहे थे, ट्रेन में स्टील और चाय की महक थी, और लंबी दूरी की यात्रा की थकान भी साफ महसूस हो रही थी। उसने अपना माथा ठंडी खिड़की पर टिकाया और राजस्थान को अंधेरे में विलीन होते हुए देखा। उनके फोन पर घंटी बजी। प्रोफेसर शिंदे, तारांकन, मल्होत्रा, तुम कहाँ हो? शिविर में अफरा तफरी मची हुई है, काले कपड़े पहने 3 आदमी आए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं, मुझे तुरंत फोन करो। अर्जुन ने कुछ देर तक संदेश को घूर कर देखा, फिर टाइप किया, तारांकन, सर, पारिवारिक आपातकाल, बहुत खेद है, बाद में समझा दूंगा, कृपया उन्हें बता दें कि मैं मुंबई गया था। उसने अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर स्विच किया और उसे अपनी जेब में रख लिया। उसकी हथेली पर बना निशान एक बार धड़का, गर्म जैसे दूसरी धड़कन, और उसने अपनी हथेली को अपनी जांघ पर सपाट दबाया और सामान्य रूप से सांस लेने की कोशिश की। उस सपने में उसने क्या देखा था? चांद रहित आकाश के समान काली एक स्त्री, 7 दरवाजे, 1 दरवाजा चटक रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस दृश्य को फिर से याद करने की कोशिश की। वह स्त्री किसी दानव जैसी नहीं दिख रही थी, बिल्कुल भी नहीं। वह किसी ऐसी चीज जैसी दिख रही थी जिसे इतने लंबे समय तक कैद रखा गया हो कि वह कैद उसके चेहरे का हिस्सा बन गई हो। एक ऐसा क्रोध जो इतना पुराना था कि वह शांत और अधिक भयानक रूप में बदल गया था। उसने सपने में उसकी ओर नहीं देखा था, लेकिन किसी तरह बिना देखे भी ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके प्रति सचेत हो। उसके भीतर के किसी हिस्से ने ठंडे यकीन के साथ समझ लिया, वह जानती है कि किसने सील तोड़ी। उन्होंने आंखें खोली, उसके बगल में बैठी महिला ने बुनाई बंद कर दी थी। वह उसे देख रही थी, किसी सहयात्री की तरह सामान्य नजर नहीं, बल्कि एक टकटकी भरी सधी हुई निगाह। उसके हाथों में अभी भी बुनाई की सुइयां थीं, उसके चेहरे की बनावट तीखी थी, एक कंधे पर काली चोटी थी और उसकी आंखें डिब्बे की धुंधली रोशनी में इस तरह चमक रही थी कि पल भर के लिए मानो चांदी जैसी लग रही थी। वाराणसी जा रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज शांत थी, तटस्थ, मानो उसे पहले से ही जवाब पता हो। अर्जुन का हाथ अनायास ही उसकी निशान वाली हथेली पर चला गया। हाँ, उसने सावधानी से कहा। उसने एक बार सिर हिलाया, मानो खुद से किसी बात की पुष्टि कर रही हो, और फिर से बुनाई करने लगी। लेकिन वो सोई नहीं, एक पल भी नहीं। अगले 6 घंटों तक, जब ट्रेन राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच अंधेरे मीलों का सफर तय कर रही थी, जब बाकी सभी यात्री थकावट भरी नींद में ऊंग रहे थे, लगभग चांदी जैसी आंखों वाली वह महिला एकदम सीधी बैठी, अपने बड़े नारंगी रंग के किसी उपकरण को बुनती रही, और उसने एक बार भी अपनी आंखें बंद नहीं की। अर्जुन ने खिड़की के प्रतिबिंब में उसे देखा और उस गहरी सहज प्रवृत्ति से समझ गया, जिस तरह से उसके दिन में पहले ही 3 असंभव घटनाएं घट चुकी थीं, कि उसे उसके बगल में बैठने की जगह संयोग से नहीं मिली थी। उसे उसके बगल में बैठने की जगह मिल गई थी। जैसे ही ट्रेन वाराणसी की ओर मुड़ी, गंगा पर गुलाबी और सुनहरी सुबह की किरणें फूट पड़ी। इमारतों के बीच से विशाल नदी अचानक प्रकट हुई, मानो कोई रहस्य खुल गया हो। विशाल, चांदी भूरी, इतनी प्राचीन की शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ट्रेन की खिड़की से भी थका हुआ, डरा हुआ और लगभग पूरी तरह से कंगाल होने की कगार पर अर्जुन को नदी का ये दृश्य देखकर अपने सीने में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। कुछ शहर समय में विद्यमान होते हैं, वाराणसी समय के नीचे विद्यमान था। महिला ने अपना बुना हुआ सामान समेटा, खड़ी हुई और अपने कंधे पर एक छोटा सा थैला टांग लिया। उसने एक बार फिर अर्जुन की ओर देखा। दशाश्वमेध घाट पर मत जाना पहले दिन, उसने सरलता से कहा, वो लोग वहां इंतजार करते हैं। फिर वह डिब्बे के दरवाजे की ओर चली और ट्रेन के पूरी तरह रुकने से पहले ही गायब हो गई। अर्जुन सुबह की रोशनी में अकेले बैठे थे, उनके चेहरे पर सुबह की किरणें पड़ रही थीं, बाहर गंगा चमक रही थी, उनकी हथेली पर बना निशान नाड़ी की तरह गर्म और स्थिर था। वह आ चुका था, इसका जो भी मतलब हो।